मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा और इसे मैं शीर्षक अगर देने के बारे में सोचूं तो मैं कह सकता हूं कि पढ़ें और फिर उस पर सोचें, यानी कि विचार करें। इस पर मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा और डेफिनेटली अगर समय मिल सका तो मैं एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के आधार पर इसे आप सबके सामने रखूंगा। लेकिन पहले जो दो तीन थोड़ी छोटी छोटी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। रेडियो न्यूज में आपने एक विधेयक के बारे में सुना होगा, हालांकि दो विधेयक की बात की गई थी, लेकिन जो दूसरा विधेयक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट फिलहाल नहीं है, लेकिन जो पहला विधेयक जो न्यूज में था वो मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस विधेयक का नाम है समुद्री दस्युता रोधी विधेयक 2019। ये पारित हो गया है, अब ये कानून बन जाएगा राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद। संसद ने इसे पारित कर दिया है। नाम है समुद्री दस्युता रोधी विधेयक 2019 में यह पहले पेश किया गया होगा। इसके बाद जानते हैं आपकी विचार करने के लिए संसदीय समितियों को सौंप दिया जाता है, उस पर विचार करते हैं। उस पर जब बहस होती है तो दोनों पार्टी के जो भी दल होते हैं अपने अपने विचार अपने अपने सुझाव देते हैं और फिर इसके बाद जो संसदीय समितियां होती हैं वो उन पर विचार करती हैं और भी अलग तरह की समितियां होती हैं इससे जुड़ी हुई और फिर उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके सरकार उसे दोबारा संसद में पेश करती है। इसीलिए इसका जो ईयर है वो 2019 है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जब ये कानून बन जाएगा तो फिर अब जब बन जाएगा तब की बात है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मैं ये कहूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो जब आप अपने सिलेबस से मैच करेंगे तो सीधे सीधे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि वहां समुद्र आपको मिल जाए या वहां समुद्री डकैत आपको मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन वहां मौजूद है और वह है राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इस पर बकायदे ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं और किताबों में भी इस पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। कोई भी जो सिविल सर्विस की तैयारी करा रहा है इस टॉपिक को छोड़ेगा नहीं। अब यह तैयारी करने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वह उसे अपडेट करता रहे। भारत के संदर्भ में अगर आप सोचेंगे तो समुद्री सुरक्षा तो हमारे लिए बेहद जरूरी है। आप देखिए, भारत का नक्शा देखिए, अपने देश का नक्शा देखिए, तीन तरफ से हम समुद्र से घिरे हुए हैं। 7,500 किलोमीटर हमारे तटीय रेखाएं हैं, सोचिए तटीय क्षेत्र है। और फिर हमारा जो व्यापार होता है समुद्र से होता है, ज्यादातर हमारा जो व्यापार हो रहा है वो समुद्र से हो रहा है। अक्सर आपको पढ़ने को मिलेगा कि जैसे आप नक्शे पर जाइए, प्लीज ये काम कीजिए, नक्शे पर जाइए और देखिए कि गुजरात कहां है, तो गुजरात पश्चिम तट पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद पूरा का पूरा अरब सागर है। जब हम गुजरात से चल करके और अफ्रीका जाना चाहेंगे या यूरोप के लिए जाना चाहेंगे तो हमें अरब सागर से होकर जाना पड़ता है, वही शॉर्टेस्ट रूट होगा। और इसके बाद फिर आप अफ्रीका के मैप को देखिए तो वहां आपको जैसे ही हम अफ्रीका में एंटर करेंगे एक देश मिलेगा, यानी वो अफ्रीका का पूर्वी तट होगा। प्लीज इसको इसी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, आपको मजा आएगा और यदि एक बार समझ लेंगे तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो पूर्वी तट पर आपको एक देश मिलेगा सोमालिया, और सोमालिया सच पूछे तो समुद्री डकैतों के लिए बहुत ही बदनाम राष्ट्र है। वहां समुद्री डकैत अटैक करते हैं और जहाज को लूट लेते, सामान लूट लेंगे, लोगों को बंदी बना लेंगे, इसके बाद फिर सौदेबाजी करेंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती, और केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों अब यह जो कानून बनेगा तो इसमें जो हमारे ऑफिसर्स होंगे, जो भारतीय अधिकारी होंगे, वे समुद्री लूटपाट जो होती है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब उनको अधिकार मिल जाएगा कि वो उस पर कार्रवाई कर सके। और डेफिनेटली खासकर इसको लेकर के जो वैश्विक स्तर पर प्रयास होते हैं उसमें भी भारत की जो स्थिति है वो अपेक्षाकृत बेहतर हो सकेगी। ये इसका अपडेट है। आपने महसूस किया होगा कि मैंने इसको विस्तार के साथ थोड़ा आपके सामने रखा है। क्या इसकी जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी, मैं सीधे सीधे कह के आगे बढ़ सकता था। लेकिन मैंने इसे क्यों इस रूप में प्रस्तुत किया है, इसके पीछे कारण यह है कि आज का हमारा मुख्य विषय भी यही है कि पढ़ें और फिर उसके बारे में सोचें। तो अब आप देखिए कि सिंपल सा एक विधेयक है और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन जब हम इस पर विचार करना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो यही विषय कितना फैलता चला जाता है। और यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का मेरी दृष्टि में सबसे पुख्ता और सबसे अच्छा तरीका भी है। दोस्तों जो दूसरी खबर है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर है और इसके बारे में आप लोग अखबारों में पढ़ भी रहे होंगे कि किस तरीके से अभी एक जो फिल्म आई है पठान उसके एक नृत्य को लेकर के और उसका विरोध किया जा रहा है खासकर वस्त्रों के रंग को लेकर। बस अपडेट कर रहा हूं क्योंकि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस पर लगातार कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं, अखबारों में छपते भी रहते हैं, कुछ लोग उसके विरोध में होते हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं और ये तो हमेशा से होता आया है और मुझे लगता है कि आगे भी होता रहेगा। लेकिन मैंने इशारे के तौर पर आपको इसलिए यहां बताया है क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में इस तरह के एग्जाम्पल का उपयोग करें तो ध्यान रहना चाहिए कि जो लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं और जो बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल हैं उन्हीं का सहारा लें तो वो एग्जामिनर के मस्तिष्क पर आपके प्रति एक अच्छा प्रभाव पैदा करता है। दोस्तों एक खबर जो अखबारों में तो बहुत नहीं छपी है लेकिन मुझे ये खबर पढ़ने को बिजनेस स्टैंडर्ड में मिल गई और वो ये है कि जैव विविधता के संरक्षण पर एक बहुत ही वैश्विक समझौता हुआ है। जैव विविधता आपके सिलेबस में है जो पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है, सीधे सीधे वहां तो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा रहा है इस पर भी आपने बकायदे पढ़ा होगा, लेक्चर सुना होगा, किताबों में लिखी हुई भी बातें हैं। अब इसे आपको अपडेट करना है तो इसके जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस आप उन्हें सुन लें। पहली बात तो यह, कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र का एक शिखर सम्मेलन हुआ। संयुक्त राष्ट्र का ये शिखर सम्मेलन था, किस विषय पर हुआ? जैव विविधता पर। और इस शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन ये समझौता हुआ है। समझौते का जो संबंध है वो इस बात से है कि जो जैव विविधता को लगातार नुकसान पहुंच रहा है उसको कैसे रोका जाए और कैसे उसका संरक्षण किया जाए, इस पर समझौता हुआ है। और याद रखिए ये वैश्विक समझौता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे 196 कंट्रीज ने स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार कर लिया है, फर्स्ट पॉइंट। अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि अभी हमारे पास 17% जमीन और 10% समुद्री क्षेत्र ऐसे हैं जिनका संरक्षण किया जा रहा है। मैं आंकड़े रिपीट कर रहा हूं, 17% भूमि और 10% समुद्री क्षेत्र ये संरक्षण में है। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं इसे पर्याप्त नहीं मानते, तो अब जो वैज्ञानिक कह रहे थे उस पर यह समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत अब आप देखिए कि किया क्या गया, 17% को बढ़ा करके कितना किया गया, 30%, 17% को बढ़ा करके 30% जमीन और 10% को बढ़ा करके भी 30% समुद्र को संरक्षित किए जाने का समझौता हुआ है और पूरी दुनिया मिलकर इसे करेगी। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे वनस्पतियां विलुप्त होती जा रही हैं, जीव विलुप्त होते जा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ ही रखा है, तो डेफिनेटली आप मान करके चले कि ये जो समझौता हुआ है एक तरीके से इस दिशा में बढ़ाया गया एक माइलस्टोन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, हालांकि उसके लिए समय बहुत कम रह गया है, लेकिन देखिए अभी मैं जो बात कर भी रहा था इसी अंदाज में मैं बात कर रहा था कि आप कैसे किसी तथ्य को पढ़ेंगे और कैसे फिर उसे समझेंगे। या तो आपको समझा दिया जाएगा, अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं, कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन का लेक्चर सुन रहे हैं तो समझा दिया जाएगा, और यदि ऐसा नहीं है आप खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके सही उत्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। और चलिए आप सही उत्तर तक नहीं भी पहुंच सकते तो हम तो फिलहाल पावर ऑफ एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, आप एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि विषय की आपके पास बहुत अच्छी समझ हो। इसी दृष्टि से मैंने इन दोनों घटनाओं की चर्चा की है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं प्लीज जल्दबाजी में मत करिए। आप जल्दबाजी में मान लीजिए कि एक कोई टॉपिक है और वो डिमांड करता है कि मुझे 2 घंटे आप दीजिए, वो आपसे कह रहा है कि मुझे 2 घंटे चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है, क्योंकि तुम 2 घंटे मांग रहे हो, वो भी 2 घंटे मांगेगा, फिर वो 3 घंटे मांगेगा, तो मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। दोस्तों उसे टॉपिक को कोई लेना देना नहीं है, प्लीज नोट इट डाउन, टॉपिक को कोई लेना देना नहीं है, इस यूपीएससी को भी कोई लेना देना नहीं है। आप उनके साथ जैसा बर्ताव करेंगे उस तरह का रिजल्ट वे आपको दे देंगे। याद रखिए, आपकी सुविधा के अनुसार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं हो सकती, आपकी इच्छा के अनुसार भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं हो सकती। इसकी तैयारी होगी यूपीएससी की आवश्यकता के अनुसार, या आप यूं कह लीजिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की आवश्यकता क्या है, आपको उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मेरे पास तो इतना ही समय है, मैं तो इसी तरह से पढ़ता हूं, मेरी तो यही स्टाइल है, तो फिर ठीक है, चलिए अब हो सकता है कि आप सही ही पढ़ रहे हो, आपकी सही स्टाइल हो, अगर वो उसकी आवश्यकता को पूरा करती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप सफल हो ही जाएंगे। लेकिन अगर वो पूरा नहीं कर रही है तो मान करके चलिए कि आपको उसे पूरा करना पड़ेगा, चाहे आप उसे जिस तरीके से भी पूरा करें। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा आज होमवर्क दे रहा हूं, छोटा सा होमवर्क। मेरे पास जो लेटेस्ट प्री एग्जामिनेशन का पेपर है उसका सी सेट है। शुरू में ही तीसरे नंबर पर एक क्वेश्चन पूछा गया है संगम साहित्य को लेकर, प्लीज आप इसे पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें। केवल यह मत सोच लें कि नहीं अरे मुझे मालूम है और मैं तो इसे बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकता हूं, प्लीज इसे आप पढ़ें, क्योंकि इस पर मैं कल बात करूंगा और इस पर मैं इसी अंदाज में बात करूंगा कि आपके जो पढ़ने का तरीका है वो किस तरीके से अलग होना चाहिए, राइट। तो आप सब बेहतर होगा कि कल के मेरे डेली ऑडियो लेक्चर सुनने से पहले आप इसे पढ़ चुके हों, इस पर अपने ढंग से विचार भी कर चुके हों कि सर इस पर क्या बता सकते हैं, क्या बताने वाले होंगे, देखिए शायद मैच कर जाए, और अगर ऐसा होगा तो आपको बेहद खुशी होगी। और जब इस तरह की खुशियां हमें मिलती हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।